ओम शांति। इसमें एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसको हमने इसमें पर सफल नहीं किया तो हमारे हाथ में फिर कुछ शेष रह नहीं जाता। बहुत अनमोल खजाना है, अमूल्य पूंजी है जो कि हमको सौगात के रूप में मिली है। विशेषकर हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने समय का महत्व बताया है। नौ तरीक की मुरली सुनी थी हम सब ने। बाबा कहते हैं टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल है। बाबा ने अपने टाइम के लिए बोला था, बाप का भी ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। बड़े बड़े आदमियों का एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो बाबा कहते संसार में तुम बड़े ते बड़े आदमी हो, बड़े ते बड़ी आसामी हो। गीत में हमने सुना, मन इच्छित फल प्राप्त करने के लिए पल पल सफल करो। जिसने पल पल को सफल कर दिया, सफलता उसके हाथ ही लगेगी। तो समय कभी रुकता नहीं है। कहते हैं समय उस गंजे की तरह है जिसके बाल हाथ में नहीं आते, बाल होते नहीं ना, इसलिए समय को भी पकड़ा नहीं जा सकता। कहते ना समय को सफल नहीं किया तो समय बर्बाद कर देगा। वास्तव में समय क्यों बर्बाद करेगा किसी को? तो कुछ संसार में शब्दों का जो है ना प्रचलन भी अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। समय किसको बर्बाद नहीं करता, बल्कि समय हमको सूचना देता है कि आप बर्बाद होने से बच जाओ। हाँ, जो समय को बर्बाद करते हैं वो खुद ही बर्बाद होते हैं। समय तो वास्तव में हम सब का एक बहुत सहयोगी है, साथी है, जो बाबा कहते पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। तो कितना सहयोगी साथी है। कई बार कई दफा व्यक्त मूल्य में बाबा ने जिक्र किया है कि समय आपकी रचना है, आपका आह्वान कर रहा है। रचना मना मरे जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे एक बाप को थोड़ा मारेंगे किसी को, बाप का तो मददगार बनेगा। तो समय हम सबकी रचना है जो हमारे लिए बहुत सहयोगी है, बहुत कीमती भी है। तो हम समय पर देखेंगे एक एक सेकंड का कितना महत्व है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी की फ्लाइट बुकिंग है और एक सेकंड का फर्क पड़ गया, फ्लाइट उड़ गई, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। अंत समय बाबा क्या कहते हैं, एक सेकंड का समय मिलेगा। पेपर एक सेकंड का होगा, सेकंड में सोचा अशरीर और गए। अगर हम उस समय ही बहुत प्रकार के बोझ पकड़कर बैठे हैं, मन को बोझिल बना के रखा हुआ है, हल्का नहीं है, डबल लाइट नहीं है, तो नहीं उड़ पाएंगे। ट्रेन में जाने के लिए एक ट्रेन एक सेकंड एक मिनट पहले नहीं पहुंची, अगर एक मिनट लेट पहुंची तो ट्रेन हाथ से निकल जाती है। स्टूडेंट पूरा साल पढ़ता रहता है, अगर टाइम से परीक्षा हॉल में नहीं पहुंचे तो सारी मेहनत की कराई चट हो जाती है, बेकार हो जाती है। एक गीत भी है जो बाबा ने शायद 2016 की मुरली में बोला था, किसी के रोके नहीं रोके सवेरा, समय रुकता नहीं है किसी के लिए। कुछ दिन पहले भी मुरली चली थी एक अव्यक्त वाणी, 3-4 संडे पहले, समय किसके लिए मिला हुआ है। समय के बारे में उसमें 10 बातें थी, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। उसमें हमें स्वयं को तपाने के लिए मिला हुआ है, स्वयं की कर्मेंद्रियों को शांत। कल बाबा ने कहा था ना, तुम बगीचे में जाते हो तो क्या होता है, आंखें शीतल, नयन शीतल हो जाते, ठंडे हो जाते हैं। तो हमें स्वयं की कर्मेंद्रियों को तपाने के लिए मिला हुआ है। और किस लिए मिला है, इसमें 10 बातें बताई थी। वो 10 बातें थी कौन कौन सी? संकल्पों को अमर अविनाशी बनाने के लिए इसमें मिला हुआ है। जो भी ये संकल्प हमको मिलते हैं ईश्वरीय स्वगात को, या जो हमारी शक्ति है, जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे में ऊर्जा भरते हैं, ताकत देते हैं, हमारे मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, उन संकल्पों को अमर बनाने के लिए मिला हुआ है, अविनाशी बनाने के लिए मिला हुआ है। और किसके लिए मिला? इसमें बाप के साथ रूहान करने के लिए इसमें मिला हुआ है। और किसके लिए मिला है? रियलाइजेशन के लिए मिला हुआ है इसमें, बाप के साथ रियलाइजेशन, स्वयं की भी रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन करने के लिए इसे मिला हुआ। और रीइनकॉर्नेशन, अवतरित होकर कर्म करने के लिए इसमें मिला हुआ है। और छठा किसके लिए है? अपने संकल्पों को, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट, शुद्ध संकल्प जमा करने के लिए इसमें मिला हुआ है। नेक्स्ट, जो हमने खजाने जमा किए वो बांटने के लिए इसमें मिला हुआ है। नेक्स्ट, दो बातें हैं उसमें, विघ्न मनाशक बनने के लिए और समाने के लिए मिला हुआ इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है, छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, तो समाने के लिए, चाहे हम लौकिक परिवार में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बहुत सारी बातों को समा लेना होता है। और किसके लिए है? अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करने के लिए इसमें मिला हुआ है। तो ये तो उस मुरली में था, तो समय एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में हमको भगवान ने दिया है। ये संगम युग का केवल सारे कल्प में छोटा सा समय है, संगम युग है, जिस समय हमें सारे कल्प के लिए जमा करना है, कमाई जमा करनी है, बचत का खाता या कहो बैंक, वो जमा करने का बैंक अभी खुला हुआ है। अगर बैंक खुला है और हम जमा नहीं करवा रहे हैं उसमें, और समय पर जब जमा कराने जाएंगे उसमें बैंक बंद होने का टाइम होगा, तो क्या होगा फिर? तो है जी, पश्चाताप के सिवाय हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो समय हमको पग पग पर, चाहे वो किसी परिस्थिति के रूप में, चाहे वो किसी बात के रूप में आता है या संबंधों के रूप में आता है, पल पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। इसमें कहा जाता है ना, वक्त कुछ ना कुछ सिखाता है, वक्त वक्त की बात है। जिसने जीवन में समय पर कुछ सीखा है, ठोकरें खाई हैं, उन ठोकरों से कुछ सीखा है और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहा है, तो वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाता है। फिर वो समय उसके अनुकूल हो जाता है। अगर हम समय पर अपने आप को उस अनुसार ढाल लेते हैं और कुछ सीख लेते हैं, तो समय हमारे बहुत सारे कार्यों में मददगार बन जाता है, हमारा सहयोगी बन जाता है। संसार में कई महान आत्माएं हुई हैं, उनकी अगर जीवन को देखेंगे, बचपन में उन्होंने कितने धक्के खाए, कैसे संघर्ष किया, उसमें का यूटिलाइज सदुपयोग किया, छोटी छोटी बातें उन्होंने सीखी, छोटे छोटे कार्य किए, और फिर आज वो संसार में संसार को बहुत मदद देने वाले बन जाते हैं। तो बाबा भी हमको बहुत सारे टिप्स बताते हैं समय को सफल करने के लिए। अगर हम चिंतन करें तो हजारों टिप्स हमारे पास हो सकते हैं समय को सफल करने के लिए। तो पुरुषार्थ जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से हम अपने जीवन में रमणीकता से उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे और कौन कौन से तरीके से समय को सफल करना है। तो कौन कौन से माना, समय हमारा कहां नहीं जाना चाहिए और कहां जाना चाहिए। तो कहां कहां नहीं जाना चाहिए, हमने एक तो मुरलियां पढ़ी थी रात को समय से संबंधित, हमने सोचा खाली समय के ऊपरी मूल्यों का पढ़ा जाए तो बहुत सारे टॉपिक निकल जाएंगे उसमें। तो हाँ, फाड़ दो उसको भी। तो कहां कहां व्यर्थ जाता है, अगर हम इतना ही सोच लें कि हमारा समय कहां कहां व्यर्थ जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए। कोई टीवी सीरियल है जो हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है, बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो बार बार खींच लेती हैं, क्योंकि विस्मृति हुई पड़ी है, विस्मृति की नींद है। कहा जाता है ना, तीन प्रकार की नींद है। एक तो है जो नींद हम सोते हैं, दूसरा है अज्ञान की नींद, जिनको पता नहीं है वो भी ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक नींद है विस्मृति की निद्रा। पता है हम सबको किसमें बहुत कीमती है, कल्प कल्प की बाजी हमारे हाथ में है अभी, और उसके बावजूद भी अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं उसको, तो सबसे बड़ा पश्चाताप तो हमारे हाथ में लगेगा। अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे है जी खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। वो खून के आंसू बाहर वाले नहीं बहाएंगे, वास्तव में वो ब्राह्मण संसार वाले ही हैं, क्योंकि सब पता है संसार के इतनी चकाचौंध को छोड़ा, वो सब कुछ समाज से हमको जो सम्मान मिलता था, या हम लौकिक परिवार में थे वहां मान सम्मान था, शानो शौकत के साथ जीते थे, वो सब तुच्छ चीजें छोड़कर हमने इतना बड़ा पथ अपना लिया और भगवान का हाथ पकड़ लिया, उसका दामन पकड़ लिया। बेहद के यज्ञ में हम तन मन धन से लगे हुए हैं। ये सब देखने के बाद भी, करने के बाद भी, अगर हम फिर भी विस्मृत हो जाते हैं, कभी बीच में मूर्छित हो जाते हैं, तो कितना बड़ा हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा, स्वयं को हम कितना धोखा दे देंगे। तो विस्मृति की निंद्रा सबसे खतरनाक निंद्रा है, अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे, क्योंकि भगवान तो हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए बंधा हुआ है, बच्चे हैं उसके। जैसे लौकिक में बच्चे होते हैं तो पूरी जिंदगी मां बाप कमाई के लिए लगा देते हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए, खुद नहीं खाएंगे, भले खुद उन्होंने अभावों भरा जीवन जिया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों से मोह होता है, तो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और बाद में बच्चा खा पी के नलायक निकल आए तो फिर बाप को कैसा लगेगा। ऐसे संसार में कई उदाहरण है, ऐसे यहां भी है माउंट आबू में, बाहर बाजार में एक बार है, काफी बड़े व्यवसायी हैं, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन उनका बेटा नहीं कोई भी, और उनके रिलेशन बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छे अच्छे रिलेशन है, लेकिन बेटा नहीं है, और दौलत बहुत। बेटा उन्होंने गोद लिया तो छोटा सा हमारे पास आता था इधर, बहुत अच्छा था, एकदम रमणीक, बहुत कुछ सीखने वाला, आकर बातें करता रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो संघ के रंग में रंग गया, दौलत बहुत उड़ाने लगा। फिर उसको पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बर्बाद कर देता, क्योंकि समय पर मां बाप जो हमको सिखाते हैं, हमारे लिए जो करते हैं, वो हमें बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं, तो बाबा भी हमें इस संगम युग पर क्या से क्या बना रहे हैं, कहां मनुष्य, मनुष्य भी कैसे बन गए थे, हम निकृष्ट बन गए थे, एकदम तमो प्रधान बन गए थे, पत्थर बुद्धि बन गए थे, बंदर बुद्धि बन गए थे, क्या क्या बाबा बताते हैं, और बाबा ने कहां से कहां तक खींच के ले आए बाबा। कई दफा गहराई से रियलाइज होता है, मुरली सुनते हैं तो सोचते हैं सचमुच भगवान से हम पढ़ रहे हैं, सोचने विषय कितना भगवान से हम लोग पढ़ रहे हैं। संसार में पढ़ने के लिए कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है, ये मोटी मोटी किताबें हैं, इतना संघर्ष करना उनको, इतना कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, टेंशन है, फीस है इतनी, खर्चे इतने हैं, हाँ इतने वैरायटी प्रकार के सब्जेक्ट है उनके, बहुत टेंशन रहती है, और उस पढ़ाई में अगर असफल हो गए तो क्या होता है, फांसी भी लगा लेते हो, मर भी जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हाँ भजन होता है, यहां भी हम देखा, यहां भी हमारे पास तो पब्लिक रिलेशन में तो बहुत सारे लोग अपनी बातें बताते रहते हैं, तो यहां भी एक टीचर थे, हैं अभी भी, तो उनका बच्चा पढ़ता है यहां कोटा, जिसको एजुकेशन हब भी कहा जाता है, तो बहुत फीस खर्च करनी पड़ती है वहां। लेकिन अगर वहां बच्चों को थोड़ा सा भी अगर कह दो कि फलाने का बच्चा तो आपसे आगे चल गया, दो नंबर से भी आगे गया हुआ, तो दूसरा जो ना सुसाइड कर लेता है, उसको फील हो जाता है इतना अंदर में, इतनी टॉलरेंस पावर नहीं रही है अंदर में। तो माँ बाप कहते हैं कि आजकल बच्चों को तो कहने नहीं, बिल्कुल भी ना कहो वो ही अच्छा है, नहीं तो भरोसा नहीं उनका कुछ भी। इतनी लाखों रुपये फीस है उनकी, रहने का खर्चा है, लेकिन बाबा हमको क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सिंपल साधारण, कोई फीस नहीं है, इतनी ऊंची शिक्षा है, इतनी ऊंची शिक्षा है कि हर संकल्प जो विश्व के लिए हमारा आधार है, ये हर संकल्प विश्व को प्रभावित कर रहा है। वो तो केवल एक जन्म के लिए इनकम करते हैं, और हमारी इनकम कितनी बड़ी है, भविष्य ना केवल 21 जन्म के लिए बल्कि सारे कल्प की कमाई का आधार भी है, सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते हैं आज भी बाबा ने मुरली में समय के बारे में कहा, क्या कहा है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, और टीचर आने से पहले पहुंचना है, अगर लेट पहुंचते हो तो जैसे टीचर की इंसल्ट है। एक सेकंड पहले तो पहुंच गए होंगे ना, चलो कोई नहीं, तो इत्तफाक कभी होता है। तो ये जो हमको समय मिला है, अब हम देखेंगे किस लिए मिला है। सबसे पहले तो स्वयं को फुल चार्ज करने लिए समय मिला है, हमको स्वयं को इतना शक्तिशाली बना देना है कि जो संसार के बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने की उम्मीद भगवान ने हमारे ऊपर रखी है, क्योंकि बाबा कहते दूसरा तो कोई है नहीं जो करेगा, तुम बच्चों को ही करना है। तो भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी अपेक्षाएं रखी हैं, तो उसके लिए स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। तो स्वयं को अमृत वेले फुल चार्ज करना है, और वो अमृत वेले का प्रभाव पूरा दिन हमारे में बना रहना चाहिए, बीच बीच में उसकी स्मृति आती रहनी चाहिए कि जो हमने अमृत वेले फुल चार्ज किया है, स्वयं को उसी तरीके से बार बार चार्ज करना है, ताकि हमारी चार्जिंग का जो प्रकाश है, जो लाइट है, माइट है, वो स्वतः निकलती रहे। कल की मुरली में था ना, बहुत अच्छा, सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, तो सेवा स्वतः होती रहेगी, करने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बात है, लोग पूछेंगे, अट्रैक्शन है उसमें, एक रूहानियत भरी हुई है, तो वो उसका प्रभाव, उसके वाइब्रेशन स्वतः उस वायुमंडल को प्रभावित करेंगे। हाँ, छोटे बच्चों के लिए तोतली भाषा के लिए बोला है। तो अनेक प्रकार की बाबा युक्तियां बताते हैं, तो स्वयं को पहले अमृत वेले फुल चार्ज करना है, एकदम बाबा से सारी शक्तियां हप कर लेनी, हल चलाना है, और अलवेलेपन की नींद को त्याग देना है, क्योंकि अमृत वेले हमको बहुत सतर्क होके बैठना चाहिए। इत्तफाक ठीक है, कभी कभी कुछ बॉडी का बहाना तो वैसे हम दे नहीं सकते हैं, अगर हम प्रकृति जीते तो बॉडी भी हमको क्यों प्रभावित करे, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कारणवश कोई दवाई खाई है, कभी कभार अगर ठीक है सुस्ती है, लेकिन हमेशा अगर हम उसी डर्रे पर चलते रहे तो नहीं। तो अमृत वेले एकदम सतर्क होके बाबा से फुल शक्तियों से अपने को स्वयं को चार्ज कर लेना है, फुल चार्ज कर लेना है। और क्या करना है, बहुत सारी बातें अभी, हाँ, सकाश भी देना है, और क्या करना है, बाबा से ब्लेसिंग लेनी है अमृत वेले, ब्लेसिंग लेनी भी है और ब्लेसिंग देनी भी है, वो समय है, वो वरदानी समय। हाँ हाँ, वो भी आएगा आगे। फिर दूसरा है, ये जो समय हमको मिला है स्वयं के चरित्र को, करेक्टर को सुधारने के लिए, आज की मुरली में है, अपने करेक्टर आचरण को सुधारना है, करेक्टर आज की मुरली में आया है, करेक्टर भी, और स्वयं को करेक्शन करना है। दूसरे को बाबा कहते करेक्शन नहीं करो, स्वयं को करेक्शन करो, स्वयं का कनेक्शन जोड़ के रखना है, बाप के साथ कम्युनिकेशन बना रहे, कोई कंप्लेंट नहीं किसी से, क्वेश्चन नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, 5 सिव ने बहुत सारे सी हैं कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं किसी से जो हमारे टाइम को खा जाए, वैसे तो सी बहुत सारे वाले, तो कनेक्टिविटी हमारी उसके साथ जुड़ी रहे, कनेक्शन जोड़ के रखना है, क्लियर रखना है। 16 नंबर का पॉइंट है कनेक्शन, बाप से कनेक्शन जोड़ के रखना है, कंपनी, एक बाप की कंपनी में रहना है, कंपेनियन बाप को बनाना है। हम देखे चिंतन, अगर किसी एक शब्द को ही ले लो और बाबा के शब्द याद करते जाओ, उसमें कितना सारा हमारे हाथ में माल आ जाता है, तो कम्युनिकेशन हमारा उससे ठीक ठाक रहेगा। डर से मुक्त होना है, डिटैच रहेंगे तो डर से मुक्त हो जाएंगे। सारे दिन में हम डिटैच होने का कितना प्रयास करते हैं। इकोनॉमी के बाबा कहते अवतार बनो, संकल्पों की इकोनॉमी, व्यर्थ में संकल्पों की एनर्जी ना खत्म हो जाए हमारी, और फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि फुल स्टॉप लगाने का दिन भर में बहुत सारा बातें आती हैं, जहां हमको फुल स्टॉप लगाना होता है, तो उस समय हम फुल स्टॉप लगा दे और फरिश्ता बनकर सकाश देते रहे। फरिश्ता बनने का समय मिला हुआ, फुल स्टॉप लगाने का समय मिला हुआ है। क्वेश्चन मार्क तो जिंदगी में बहुत लगा दिए, आशय के चिन्ह में बहुत लगा दिए, अभी फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ साथ फुल स्टॉक भी जमा करना है, सर्वशक्तियों का फुल स्टॉक भी जमा करना है, ताकि हम ना केवल स्वयं को शक्तिशाली बल्कि दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने का कार्य कर सके। फ्लू से बचना है, फुल प्रूफ बन जाएंगे। और फीलिंग से बचना है, फीलिंग देवी में छोटी छोटी बातें बहुत सारी आती हैं जिंदगी में, जीवन में या सारे दिन में भी आती हैं, चाहे हमारे सहयोगी साथी हैं, हम जिन जाए कोई कुछ छोटा बोले तो मन में नहीं रखने का, नहीं तो ब्राह्मण जीवन में ये होता है छोटी छोटी बातों को भी मन में रखते हैं, डोंट केयर। और उस समय उन बातों को अगर हमने जीवन में रख दिया तो सारा दिन फिर उसका चिंतन चलता रहता है। इसलिए जो किसी ने बोल दिया छोड़ दिया, क्योंकि परिवार अपना ही है, कहां तक पकड़ के किस किसी की बात को पकड़ कर बैठे रहेंगे। इसलिए दादी जानकी जी छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ते थे, बड़ी बातों को भी नहीं। कोई अगर किसी की कंप्लेंट भी लेकर जा रहा है तो उसके लिए नहीं है वो बैठे हुए। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा ना, बड़ों निमित्त जो बने हुए हैं सेवा के लिए, उनका समय लेना भी ठीक नहीं है, बोझ है वो भी। हमने एक बार मुन्नी बहन जी से किस बात की थी, तो बहन जी कहते पहले क्यों नहीं बताया आपने, तो हमने बोला बहन जी बाबा ने कहा बड़ों का समय लेना ठीक नहीं है, और ये छोटी सी बात थी इसलिए आप इधर आए तो हमने बता दिया। तो बड़ों का समय लेना भी ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। मान लीजिए जो बड़े नियमित हैं और वो किसी ऐसी सेवा के बारे में सोच रहे हैं जिससे एक बेहद का कल्याण होने वाला है, और उसी समय हम जाके उनके उनके सामने प्रत्यक्ष सामने उपस्थित हो जाते हैं और उनके संकल्पों में हम एंटर कर रहे हैं। और वैसे भी आप देखो, हमने देखा जो योग में बैठकर सोचो वो बाद में भूल जाता है, अगर उस समय हमने नहीं लिखा है। अभी हम सवेरे सोचते हैं एक दो पॉइंट खींच गए, तो हमने बाद में लिखा है एक दो पॉइंट खींच गए, तो बड़े जिसमें सोच रहे हैं वो बरदानी समय होता है, क्योंकि बेहद की स्थिति में स्थित रह के सोच रहे हैं, बेहद विश्व के कल्याण के लिए सोच रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एंटर कर दे उसमें, वो थोड़ा लड़ख माना हम तो समय को उनको बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं ना। छोटी छोटी बातों को लेकर हम किसी का समय लेते हैं तो हमारे ऊपर ही बोझ चढ़ जाता है। फरियाद नहीं करनी है बल्कि याद में रहना है, फरियाद करने का समय नहीं है। फिर है गुड विशेष, शुभ भावना, शुभ कामना, बहुत बड़ा होमवर्क है ये सबके प्रति। पहले तो सबके प्रति, पहले खुद के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। एक बार रत्नमोहन दादी जी ने एक टॉपिक दिया था रहम दिल के ऊपर। हम रात को जब बैठते थे हिस्ट्री हॉल में, दादी बिठाते, दो दो घंटे बिठा देते थे रत्नमोहन दादी, कमाल है उन दिनों के। तो हम उस समय भी सोचते थे कि इतनी एज में दादी बैठने हमारे साथ बैठ रहे हैं और अभी भी इतना उमंग सा कायम है। रात को पौने ग्यारह ग्यारह बजे, 9 बजे बैठे, पौने 11 बजे तक बैठ रहते थे। लीला बहन कहते दादी बस करो बस करो, लेकिन दादी हमारे, हम छोटे छोटे जब 5-6 साल के जब यहां होते थे मधुबन में आए, तो हम सोचते थे कि हमारे ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। माना एक एक बच्चे के ऊपर बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर कितना सशक्त बनाना चाहता है, तो उनका ध्यान भी हम सबके ऊपर रहता है। तो हमें समर्थ शक्तिशाली बनाने के लिए नजर रहती है, भगवान किसी न किसी माध्यम से हमको सशक्त बनाता है। तो उनकी शुभ भावना शुभ कामना कितनी, तो उन्होंने टॉपिक दिया था रैम दिल बनने के लिए, तो हम सब लेकर गए थे थोड़ा थोड़ा। दादी कहते एक पॉइंट तो लिखा ही नहीं है, बोला अपने ऊपर रैम करने के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, इतना सब दूसरों के लिए लिखा है, अपने लिए क्या किया। तो सबसे बड़ी शुभ भावना शुभ कामना जो स्वयं के लिए होनी चाहिए। कौन सी शुभ भावना? कि मुझे आज सारे दिन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे स्वयं को चार्ज करके रखना है, शक्तिशाली बना के रखना है, मनन चिंतन करना है, मुरली रिवाइज करनी है, मान्य मन वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। तो गुड विशेष। फिर है हमारा जो दृष्टिकोण है, संबंध संपर्क में आते हैं सबके, हम विशेषताओं को देखें। जो बाबा ने हमको इतने सुंदर सुंदर टाइटल लिखे, तुम हर बच्चा होली हंस हो, तो होली हंस की क्या विशेषताएं होती हैं, किसकी विशेषताएं देखनी है? अगर लंबे समय से हम प्रयास ही नहीं करेंगे विशेषताओं को देखने का, या कमी कमजोरियों को देखते रहेंगे, तो जो हम चाहे विशेषताएं देख रहे हैं चाहे कमी कमजोरी, वो हमारे अंदर ही प्रवेश कर रही है, उसकी नहीं देख रहे हैं, वो हम अपनी देख रहे हैं। हमारे पास इतना भर गया है कि दूसरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पास कमियां भरी हुई हैं इसलिए कमियां दिखाई दे रही हैं, विशेषताएं भरी इसलिए विशेषताएं दिखाई दे रही। तो हम स्वयं कैसे हैं, चश्मा पहना है वैसे दिखाई देगा। तो बाबा की और ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, इनकम करने का टाइम केवल अभी है, इतनी बड़ी कमाई है उन्नति का, ये याद की कमाई, याद की उन्नति है ना, कितना नंबर है 31। कदम कदम में पद्मों की कमाई है। और ये है जिम्मेवारी, हमको कर्तव्य पुकारने, कितने बड़े कर्तव्य हम सबको मिले हुए हैं, उस जिम्मेवारी को निभाना है। चाहे हम बड़ी बड़ी सेवाओं में नहीं जाते हैं, लेकिन जहां हम रहते हैं एक एक जो हमारा कर्म है बहुतों को कुछ सिखा रहा है। कल ही हम देख रहे थे कुछ सेवादार बैठे थे, तो कैसे वो मधुबन निवासियों को छोटी छोटी बात को नोट करते हैं, गाइड करते हैं, आपस में चर्चा कर रहे थे कुछ, तो सीख कर लेकर जा रहे हैं, वो नेगेटिव भी देख रहे हैं और पॉजिटिव भी देख रहे हैं। हमारा वर्तमान अनेकों अनेक आत्माओं के भविष्य का निर्माण कर रहा है, हम उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो नोट करते हैं, थी छोटी सी बात ही लेकिन वो बहुत बड़ी बन जाती है उनके लिए, वो अप्लाई करेंगे और कराएंगे भी, सुनाएंगे भी सबको। तो कितना हमारे पर जिम्मेवारी जवाबदारी है। और कुछ एक बातों में हमको किनारा भी करना पड़ता है, हम सोच रहे हैं भले किसी को बुरा लगे लेकिन हमको किनारा करना जरूरी है। जहां व्यर्थ का चिंतन चल रहा है, जहां हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जहां हमारे काम की कोई बात नहीं हो रही है, अर्थात इस यज्ञ के प्रति नहीं है वो, या व्यर्थ का वातावरण बनाने के लिए है, तो वहां से किनारा करना उचित ही है, उसी में हमारा कल्याण है। तो वहां भी हमको बहुत दृढ़ रहना पड़ता है, क्योंकि दोस्ती है ना सबके साथ। जैसे मान लीजिए आप सबसे मेरी दोस्ती है और हम व्यर्थ चिंतन में लगे हुए हैं, तो किनारा करना मुश्किल हो जाता ना, लेकिन किनारा करना पड़ेगा युक्ति से, युक्ति युक्त किनारा, ताकि उनको भी ना लगे। हाँ, हमारा किनारा करना उनको कुछ पढ़ा के सिखा, पाठ पढ़ा के जाए। फिर नेक्स्ट है गॉडली लव, परमात्म प्यार से अपने को बहुत भरपूर करना है, जो कि अभी संसार में क्या है, परमात्म प्यार का अकाल पड़ा हुआ है। ईश्वरीय स्नेह का आकर्षण, कितने फायदे बताए थे ईश्वरीय स्नेह के, संडे की मूल्य गई ना, ईश्वरीय स्नेह क्या क्या कर देता है, पत्थर को पानी पिघला देता है। बाबा ने बताया था ना, बड़े बड़े साधु महामंडलेश्वर, उनकी कॉन्फ्रेंस जो थी उसी के बारे में चर्चा थी, कैसे वो कदमों में झुके आ गए। तो गॉडली लव अपने आप में भरपूर करना है। नेक्स्ट है ये माया को विदाई देने का समय है, माया जीत बनने का समय है, माया के युद्ध, माया तो विदाई लेने आ रही है लेकिन हम उसको बार बार बुला रहे हैं। बाबा कहते ना, माया तो छूटना चाहती है लेकिन तुम बच्चे उसको चाय पानी पिलाते हो, निमंत्रण देते हो, तो खातरी करते हो उसकी, तो माया से विदाई लेने का टाइम है, उसको विदाई दे देनी है अभी, आह्वान कर रहे हैं उसको, वही तो खातरी करते हैं ना बाबा कह रहे हैं, तो माया को विदाई दे देनी है। और स्वयं को निराकारी निर्विकारी निरहंकारी इस स्थिति में स्थित करना है, जो बाबा की अंतिम शिक्षा है, साकार बाबा की, निर्मल जीवन बना देना एकदम स्वयं के जीवन को। और सदा कैसे रहना है, बाबा कहते अपना चार्ट दो बातों में, लंबा नहीं, क्या सदा ओके रहना है, कुछ भी हो जाए, जो बीत गया सो बीत गया, उसको चिंतन नहीं करना है, बीती बात की आश, बीती बातों को याद नहीं करना है। दो नंबर का पॉइंट है, बीती बात को याद नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की चिंता रखनी है। परफेक्ट बनाने का समय है, परिपक्व बनाने का समय है, परिपूर्ण बनाने का समय है। तो देखना स्वयं में कहां कहां डिफेक्ट है, स्वयं का, स्वयं के परिवर्तन का समय है, महान परिवर्तन का समय है ये। सब प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित, सदा खुश। प्रश्न क्यों पकड़ के जिंदगी भरे तो प्रश्नों में उलझे रहे, अब भी अगर हम प्रश्नों के उलझ रहे, वो ऐसे कर रहा है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है, सबसे परे जाना। हम प्रश्न से मुक्त हो जाएंगे तो सब प्रश्न से मुक्त हो जाएंगे, पश्चाताप से मुक्त हो जाना है। स्वयं को रियल गोल्ड बनाना है, सच्चा सोना। भाव कहते हैं परिस्थिति अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लो। और आगे तो दिन प्रतिदिन संसार की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो स्वयं को उन परिस्थितियों में कैसे रियल गोल्ड बना के रखना है, इसका समय अभी है वो रियल गोल्ड बनाने का। और साक्षी होकर साकार देने का समय है। और स्वयं के अंदर जो टैलेंट है उनको निखारने का समय है। विशेषताएं, हम सबको अपनी अपनी विशेषताओं का पता है, लेकिन हम लगाते नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, कोई कोई बच्चे हैं लेकिन अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाना नहीं आता है। तो संगठन में हम सबको ये सीखने को यही मिलता है कि कैसे विशेषताओं को आगे लगाएं, विशेषताओं को कार्य में लगाएं। तो विशेषताओं में निखार स्वतः आता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। संगठन का बल है, ऑटोमेटिकली उड़ चलेंगे हम। तो टैलेंट भी अपने उनमें निखार लाना है, कार्य में लगाने हैं। और ये जीवन कैसा है, उत्सव। बाबा ने कहा हर जीवन उत्सव है। दिवाली आ रही ना कल, लेकिन हमारी तो हर रोज दिवाली है, स्वर्ग से भी बेहतर दिवाली है। संसार में तो कैसे दिवाला निकल रहा है, लेकिन बाबा हम सब बच्चों के जीवन में खुशियां खुशियां भर दी है। हर जीवन, हर पल, हर उमंग, हर सेकंड उमंग उत्साह से भरा हो। और ये जीवन कैसा हो, वरदानी जीवन। हमारा हर बोल, हमारी हर दृष्टि, हमारी चलन सब वरदानी हो, कुछ ना कुछ किसी को देती रहे, दाता का समय है। और हमारी भावना विश्व कल्याण की भावना हो। भावने का बाप समान विश्व कल्याणी, बाप का कर्तव्य है विश्व का कल्याण करना, विश्व को पावन बनाना। तो हम सब का भी एकमात्र कर्तव्य है विश्व का कल्याण करना। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फोर्स बनना स्वयं में। अभी उड़ान भरनी है तो एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे आजकल जो नए नए विमान आते हैं तो कितने जबरदस्त आते हैं वो, पहले जैसा फोर्स नहीं है उनमें, बहुत एक्स्ट्रा फोर्स है वो। यहां बैठे बैठे कहां तक पहुंच जाते हैं वो। तो हमारे में भी इतना बल भर जाए, शक्ति भर जाए, एक सेकंड में हम कहां से कहां किसी को अनुभव करा दे, टच करा दे। तो एक्सपर्ट बनना है, एक्स्ट्रा फोर्स बनना है, एक्स्ट्रा फोर्स बनने में एक्सपर्ट बनना है, बहुत सारी बातों में एक्सपर्ट बनना है। और सबको सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान सभी को चाहिए, छोटा बच्चा उसको भी चाहिए, बड़े चाहे बड़े हैं उसको भी चाहिए। सम्मान दो, सम्मान लो। और जिद, अनुभव की प्रतिज्ञा करनी है, जिद करनी है। तो ये 26 बातें थी एबीसीडी के हिसाब से बनाई थी। तो बहुत सारी बातें हैं चिंतन करने के लिए, समय हमको कहां कहां लगाना है। समय बड़ा कीमती है, उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। समय भक्तों को साकाश देने का, उनकी इष्ट देव बनकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय है। भटकती तड़पती रोगी आत्माओं को साकाश देने का, दुख हरने का समय है। संसार में जो प्रकृति अपना तांडव नित्य मचा रही है, प्रकृति को साकाश देने का समय है। तो बहुत सारी बातों के लिए हमको इतना समय सौगात के रूप मिला है, तो हम किस तरीके से यूज करें हम स्वयं को जांच सकते हैं। तो देखना है समय का सदुपयोग कैसे करें, दुरुपयोग नहीं करना है। बुद्धि रूपी बर्तन जो हमको इस समय को सदुपयोग करने के लिए, उसको चिंतन में लगाना है, नहीं तो बुद्धि दूसरी दूसरी बातों में जाती रहती है। स्मार्ट योगी बनने का एकदम हाईटेक योगी। अच्छा, हाँ, एक जो संसार का बड़ा व्यक्ति है वो भी उतना टाइम यूज कर रहा है, मजदूर भी उतना टाइम यूज कर रहा है, लेकिन कौन किस तरीके से कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चल तो रहा है, एक है ऊपर से चल रहा है, एक है नीचे से, दोनों चल रहे हैं, लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा है? एक सेकंड में करोड़ों, और एक सेकंड में कितना होगा, एक पैसा भी नहीं होगा उसका। और हमारा तो अनगिनत है पद्म कमाई है, बाबा कहते। अच्छा, ओम शांति।